चलिए समझते हैं कि गायत्री मंत्र में स्वीकार का असली मतलब क्या है। देखिए, हम इसे अक्सर सिर्फ एक प्रार्थना मान लेते हैं, है ना, पर यह उससे कहीं ज्यादा है। ये असल में एक साधक की 3 कदमों वाली एक गहरी यात्रा है जिसमें वो दिव्य गुणों को अपनाता है। तो पहला कदम है सक्रिय स्वीकृति। यहां साधक सिर्फ मांग नहीं रहा है, बल्कि वो खुद आगे बढ़कर कह रहा है, मैं आपके तेज को वरण करता हूं और आपके गुणों को धारण करता हूं। मतलब ये एक लगातार चलने वाली क्रिया है, पैसिव होकर बस मान लेना नहीं। फिर आता है दूसरा कदम, और ये और भी गहरा है। ये है ईश्वर के साथ एक हो जाने का एहसास। अब साधक सिर्फ अनुकरण नहीं कर रहा, बल्कि वो ये महसूस कर रहा है कि हम आपके जैसे ही तेजस्वी हैं। सोचिए, ये सिर्फ नकल नहीं, बल्कि अपने अंदर ही उस दिव्यता का अनुभव करना है। कितना बड़ा बदलाव है ये। और इस यात्रा का अंतिम पड़ाव है कृतज्ञता। जब साधक को लगता है कि उसने वो दिव्य गुण पूरी तरह से अपना लिए हैं, तो प्रार्थना धन्यवाद में बदल जाती है। हमारी बुद्धि को सही राह दिखाने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो गायत्री मंत्र में स्वीकार सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक पूरा परिवर्तन है, चाहने से होने तक और आखिर में धन्यवाद देने तक का एक सफर।
आज हमारे पास गायत्री मंत्र पर बात करने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है।
हाँ।
हमारे श्रोतों के मुताबिक ये सिर्फ एक मंत्र नहीं है, बल्कि एक पूरी यात्रा है। इसके 3 हिस्से हैं, देना, प्रार्थना और स्वीकारना।
बिल्कुल। और आज हम इसी तीसरे और सबसे मतलब दिलचस्प हिस्से पर बात करेंगे, स्वीकारना या एक्सेप्टेंस।
हाँ, क्योंकि श्रोत कहते हैं कि असल बदलाव यहीं से शुरू होता है।
सही बात है। ये सिर्फ मंत्र बोलना नहीं है, बल्कि उसे जी कर अपने अस्तित्व का हिस्सा बना लेना है।
और स्वीकारने के भी अब देखिए 3 अलग अलग पड़ाव हैं।
अच्छा, तो इस यात्रा का जो पहला पड़ाव है वो क्या है? मतलब जब कोई इन दिव्य गुणों को स्वीकारना शुरू करता है तो उसकी सोच कैसी होती है?
तो देखिए, पहली अवस्था में साधक एक सक्रिय भूमिका में आ जाता है। प्रार्थना में वो मांग रहा था, अब वो खुद चुन रहा है।
चुन रहा है, हाँ। वो कहता है, आपकी जो दिव्य रोशनी है, जो ज्ञान का प्रकाश है, मैं उसे वरण कर रहा हूँ, उसे अपना रहा हूँ। और आपके अंदर जो अच्छाई है, जो पापनाशक गुण है, उसे हम अपनी जिंदगी का हिस्सा बना रहे हैं।
मतलब ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, एक कोशिश जो अभी चल रही है।
बिल्कुल, ये एक कोशिश है। और मतलब अब गेंद साधक के पाले में है, वो सिर्फ हाथ फैलाकर खड़ा नहीं है।
लेकिन क्या वो पूरी तरह आत्मनिर्भर हो गया है?
नहीं, यही तो खास बात है। इस सक्रिय कोशिश के बावजूद आखिरी पंक्ति में वो यही कहता है, आप हमारी बुद्धि को सही रास्ते पर चलाते रहें।
अच्छा,
यानी वो जानता है कि इस रास्ते पर चलने के लिए उसे लगातार उस दिव्य मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी।
ठीक है, तो ये पहली अवस्था हुई, लेकिन इसमें अभी भी एक मैं और आप वाली दूरी महसूस होती है। मैं आपकी अच्छाई अपना रहा हूँ, ये फासला क्या कभी मिटता भी है?
आपने बिल्कुल सही पकड़ा, और यहीं से हम दूसरे पड़ाव पर आते हैं।
ओके।
जहाँ चेतना एक बहुत बड़ी छलांग लगाती है,
जी,
यहाँ सोच बदल जाती है। अब साधक ये नहीं कह रहा कि मैं आपकी रोशनी को अपना रहा हूँ, बल्कि वो कह रहा है, मैं खुद आपकी तरह उस रोशनी से भरपूर हूँ। मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ, से सीधा मैं आपके जैसा हूँ पर आ जाना।
एक मिनट, ये तो बहुत बड़ा दावा है, इसका मतलब क्या हुआ?
जी,
ये सिर्फ एक मानसिक सोच है या इससे कुछ गहरा है?
ये तादात्म्य की अवस्था है। तादात्म्य मतलब अब कोई भेद नहीं रहा। जैसे पानी की एक बूंद सागर में मिलकर खुद सागर बन जाती है ना, वैसे ही साधक खुद को उस दिव्य शक्ति का सिर्फ अंश नहीं, बल्कि स्वरूप ही मानने लगता है।
वाह।
हालांकि दिलचस्प बात यह है कि इस अवस्था में भी वो कहता है, मैं आपके गुणों को अपने जीवन में धारण कर रहा हूँ।
मतलब पहचान तो मिल गई, पर अभ्यास अभी भी जारी है।
एकदम, उन गुणों को रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने का अभ्यास अभी भी चल रहा है।
तो पहले गुणों को अपनाया, फिर खुद को उन गुणों का स्वरूप ही मान लिया। तो फिर इस यात्रा की आखिरी मंजिल क्या है? इसके बाद भी कुछ बचता है?
हाँ, आखिरी मंजिल है पूर्णता और कृतज्ञता की। यहाँ आकर सारी क्रियाएं पूरी हो जाती हैं।
पूरी हो जाती हैं।
हाँ, अब साधक कहता है, मैं आपकी तरह तेजस्वी हूँ और आपके सारे दिव्य गुण मेरे जीवन में धारण किए हुए हैं। अब कोई कोशिश नहीं है, यह एक स्थापित सत्य बन चुका है।
जैसे कोई संगीतकार सालों के रियाज के बाद वो खुद संगीत बन जाता है।
बिल्कुल सही उदाहरण है। उसे सोचना नहीं पड़ता, सुर अपने आप लगते हैं।
अरे, और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा बदलाव तो आखिरी पंक्ति में आया है। अब यहाँ कोई निवेदन या प्रार्थना नहीं है।
एकदम, यहाँ कर पूरी कहानी पलट जाती है। प्रार्थना की जगह अब सिर्फ धन्यवाद है। साधक कहता है, हमारी बुद्धि को सही मार्ग पर प्रेरित करने के लिए आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
वाह।
निवेदन से शुरू हुई यात्रा अब शुद्ध कृतज्ञता पर खत्म होती है। यह इस बात की पुष्टि है कि जो मांगा था वो मिल चुका है।
तो कुल मिलाकर यह यात्रा एक मांगने वाले से शुरू होकर उस दिव्य शक्ति जैसा बनने की प्रक्रिया से गुजरते हुए अंत में उसी शक्ति के प्रति कृतज्ञता के भाव पर खत्म होती है। ये तो अध्यात्म का पूरा सार लगता है।
बिल्कुल, और ये हमारे श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाता है ना। स्रोत हमें प्रेरणा मांगने से लेकर उसके लिए आभारी होने तक का एक रास्ता दिखाते हैं, लेकिन क्या होगा अगर कोई अपनी यात्रा की शुरुआत ही इस गहरी कृतज्ञता के भाव से करे।
सही बात है। ये हमारे व्यक्तिगत विकास और मंजिल तक पहुंचने के नजरिए को कैसे बदल सकता है, सोचने वाली बात है।
ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम सब ने इस मंत्र को अनगिनत बार सुना है, लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसकी एक ऐसी व्याख्या पेश करते हैं जो किसी नक्शे की तरह है। ये स्रोत बताते हैं कि गायत्री मंत्र सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि चेतना के विकास की एक तीन चरणों वाली यात्रा है। पहला चरण है देना,
जहां ईश्वर अपने गुणों का परिचय देता है।
बिल्कुल। दूसरा है प्रार्थना निवेदन, जहां एक साधक उन गुणों को पाने की इच्छा करता है। और तीसरा, जो आज हमारी चर्चा का केंद्र है, वो है स्वीकारना।
और यही वो स्टेज है जहां सारी थ्योरी मतलब प्रैक्टिकल बन जाती है।
हाँ, तो ये समझने के लिए कि स्वीकारने का असली मतलब क्या है, हमें पहले दो चरणों को बस छूकर निकलना होगा, ताकि हम आज की इस गहरी पड़ताल के लिए तैयार हो सकें।
बिल्कुल। और ये स्वीकारना या एक्सेप्टेंस का चरण ही सबसे क्रांतिकारी है, क्योंकि यहीं पर ज्ञान अनुभव में बदलता है। यहीं पर जानना और होना, इसके बीच का जो फासला है वो मिटता है।
अच्छा।
और हमारे स्रोत इस स्वीकारने की प्रक्रिया को भी कोई एक झटके वाली घटना नहीं, बल्कि अपने आप में एक मिनी जर्नी की तरह दिखाते हैं, जिसके खुद तीन अलग अलग पड़ाव हैं।
वाह, ये तो कमाल का फ्रेमवर्क है। तो अगर हम इस स्वीकारने वाले चरण को परत दर परत खोलें, तो हमारे स्रोत पहली परत यानी स्रोत 3A के बारे में क्या बताते हैं?
पहली परत को हम करने की अवस्था कह सकते हैं, द स्टेज ऑफ डूइंग,
करने की अवस्था।
हाँ, यहाँ साधक अब भविष्य के वादे नहीं कर रहा, बल्कि वर्तमान में इन द प्रेजेंट मोमेंट उन गुणों को अपनाने की एक सक्रिय कोशिश कर रहा है।
अच्छा, तो यहाँ पर व्याख्या कैसे बदलती है? स्रोत 3A में साधक कहता है, हे स्थूल सूक्ष्म और कारण स्वरूप सर्वव्यापी न्यायकारी सर्वशक्तिमान सत्ता। एक मिनट, इसे थोड़ा सा अनपैक करते हैं। स्थूल सूक्ष्म और कारण, इसका मतलब है कि वो उस शक्ति को संबोधित कर रहा है जो इस फिजिकल वर्ल्ड मतलब स्थूल,
हमारे विचारों और भावनाओं की दुनिया सूक्ष्म,
हाँ, और इन सब के मूल कारण मतलब कारण में मौजूद हैं। तो ये एक तरह से पूरे अस्तित्व को एवरी प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस को एड्रेस करना है।
बहुत सही पकड़ा। और इस संबोधन के बाद पहला संकल्प आता है, हम आपकी तेजस्विता को वर्ण कर रहे हैं।
कर रहे हैं,
हाँ। तेजस्विता का मतलब सिर्फ बाहरी चमक नहीं, बल्कि ज्ञान प्रतिभा और मॉरल स्ट्रेंथ की वो डिवाइन लाइट है। और सबसे जरूरी शब्द है कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस।
और दूसरा संकल्प भी इसी तर्ज पर है, हम आपके पापनाशक देव स्वरूप गुणों को जीवन में धारण कर रहे हैं। फिर से, कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि हम करेंगे, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। और आखिरी लाइन है, आप हम सभी की बुद्धि को बलपूर्वक सन्मार्ग पर प्रेरित करते रहें।
सही बात है।
मतलब साधक कोशिश तो कर रहा है, पर उसे अभी भी गाइडेंस की, एक सहारे की जरूरत महसूस हो रही है।
हाँ, और ये ग्रामर का बदलाव, ये टेंस का शिफ्ट ही यहाँ का सबसे बड़ा रहस्य है। प्रार्थना के चरण में साधक कह रहा था, हम धारण करेंगे, फ्यूचर टेंस में, जो एक इरादा था, एक वादा,
एक प्रॉमिस था।
बिल्कुल। लेकिन अब वो कह रहा है, हम धारण कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई तैरना सीख रहा हो। पहले वो सोचता है, मैं एक दिन तैरूंगा। फिर जब वो पानी में हाथ पैर मार रहा होता है, मुश्किल से सांस ले रहा होता है, तब वो असल में तैर रहा होता है। वो प्रोसेस में है, ये स्टेज वही है।
अच्छा।
ये घोषणा है कि बदलाव कल नहीं, अभी इसी क्षण हो रहा है। साधक अब इंतजार नहीं कर रहा, वो एक्टिवली उस काम में जुट गया है।
तो पहले चरण में साधक गुणों को अपनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि जर्नी यहीं खत्म नहीं होती। एक पॉइंट आता है जब कोशिश करने की फीलिंग पहचान में बदल जाती है।
हाँ, एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है ये।
बिल्कुल।
श्रोत 3B हमें इसी दूसरे पड़ाव पर ले जाता है। हाँ, ये दूसरा पड़ाव है पहचान का, द स्टेज ऑफ आइडेंटिफाइंग। यहाँ साधक और साध्य के बीच की दूरी और कम हो जाती है। संबोधन वही रहता है, लेकिन पहले संकल्प में एक जबरदस्त, एक क्रांतिकारी बदलाव आता है।
और वो बदलाव क्या है? स्रोत 3B कहता है, हम आपके जैसे तेजस्वी श्रेष्ठ हैं। ये तो बहुत बड़ा लीप है,
है ना?
साधक अब ये नहीं कह रहा कि मैं आपकी तेजस्विता को अपना रहा हूँ, बल्कि वो कह रहा है मैं आपके जैसा ही तेजस्वी हूँ। एक मिनट, क्या ये कहना थोड़ा अहंकारी नहीं लगता? क्या साधक यहाँ खुद को ईश्वर के बराबर मान रहा है? इसमें और ईगो में क्या फर्क है?
ये सवाल बहुत जरूरी है और यही इस स्टेज की खूबसूरती है। ये अहंकार नहीं है, बल्कि अपनी असली क्षमता को पहचानना है।
अच्छा,
ये वैसा ही है जैसे एक राजकुमार जो भूल गया था कि वो राजकुमार है, अचानक उसे अपनी असलियत याद आ जाए। वो राजा के बराबर होने का दावा नहीं कर रहा, बल्कि अपने अंदर मौजूद शाही खून को पहचान रहा है।
सही
वाक्यांश, हम आपके जैसे यहाँ महत्वपूर्ण है। ये बराबरी का दावा नहीं, बल्कि स्वरूप की समानता की पहचान है। साधक कह रहा है कि जो दिव्य चिंगारी आप में है, वही मुझ में भी है। इट्स अ क्लेम ऑफ पोटेंशियल, नॉट ऑफ स्टेटस।
तो ये अनुकरण से पहचान की ओर एक कदम है।
बिल्कुल।
अच्छा, तो ये बाहर से कुछ लेने की बजाय अपने भीतर मौजूद चीज को पहचानने जैसा है। लेकिन यहां एक और दिलचस्प बात है। स्रोत बताता है कि दूसरा संकल्प वैसा ही रहता है जैसा पहले चरण में था। हम आपके पापनाशक देव स्वरूप गुणों को अपने जीवन में धारण कर रहे हैं। ऐसा क्यों?
ये इस प्रक्रिया की वास्तविकता को दिखाता है। आध्यात्मिक विकास हमेशा एक समान नहीं होता,
मतलब एक जैसा नहीं होता।
हाँ, हो सकता है साधक ने अपनी तेजस्विता या अपने डिवाइन नेचर को तो पहचान लिया हो, लेकिन बाकी गुणों जैसे पापनाशक स्वरूप को अभी भी जीवन में उतारने की प्रक्रिया में हो।
अच्छा,
मतलब एक स्तर पर पहचान हो गई है, लेकिन दूसरे स्तरों पर अभी भी करने की अवस्था जारी है। ये दिखाता है कि ट्रांसफॉर्मेशन ग्रेजुअल होता है।
हाँ।
और इसीलिए आखिरी पंक्ति भी वही रहती है, आप हम सभी की बुद्धि को बलपूर्वक सन्मार्ग पर प्रेरित करते रहें। पहचान के बावजूद मार्गदर्शन की आवश्यकता अभी भी बनी हुई है।
ये बहुत गहरा है। तो हम करने की अवस्था से पहचानने की अवस्था तक आ गए, लेकिन यात्रा का अंत अभी भी बाकी है। स्रोत 3C हमें स्वीकृति के शिखर पर ले जाता है, जो पूरी तरह से अलग है।
कृतज्ञता की अवस्था।
हाँ,
बिल्कुल, ये है होने की अवस्था, द स्टेज ऑफ बीइंग। यहाँ प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। पहला संकल्प वही रहता है जो पिछले चरण में था, हम आपके जैसे तेजस्वी श्रेष्ठ हैं।
तो वो पहचान अब पक्की हो गई है।
हाँ, वो अब उसका सच है।
लेकिन असली बदलाव दूसरे संकल्प में आता है ना?
एक
बहुत ही छोटा लेकिन बहुत शक्तिशाली बदलाव। स्रोत 3C में साधक कहता है, हम आपके जैसे पापनाशक देव स्वरूप गुणों को अपने जीवन में धारण किए हुए हैं।
किए हुए हैं।
हाँ, कर रहे हैं से किए हुए तक का सफर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब है कि काम पूरा हो चुका है। ये अब कोई ऑनगोइंग प्रोसेस नहीं है, बल्कि होने की एक अवस्था है, अ स्टेट ऑफ बीइंग। तैरने वाले उदाहरण पर वापस जाएं, तो ये वो अवस्था है जब वो व्यक्ति खुद को तैराक कहता है।
हाँ हाँ,
उसे अब तैरने की कोशिश नहीं करनी पड़ती,
तैरना उसका स्वभाव बन चुका है।
बिल्कुल। उसी तरह वो दिव्य गुण अब साधक के व्यक्तित्व का एक स्थायी, एक अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। वो उन्हें अपना नहीं रहा, वो गुण अब वही है।
वाह।
कर रहा हूं का मतलब है एफर्ट, किए हुए हूं का मतलब है नेचर।
और इस बदलाव का असर आखिरी लाइन पर पड़ता है, जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है।
हाँ,
यहाँ कोई निवेदन, कोई रिक्वेस्ट नहीं है।
बिल्कुल नहीं। आखिरी लाइन है, हम सभी की बुद्धि को बलपूर्वक सन्मार्ग में प्रेरित करने के लिए आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
प्रार्थना अब कृतज्ञता में बदल गई है।
हाँ, मांग खत्म हो गई है, केवल आभार बचा है। साधक अब मार्गदर्शन मांग नहीं रहा, बल्कि जो मार्गदर्शन मिला, जिसने उसे इस अवस्था तक पहुँचाया, उसके लिए धन्यवाद दे रहा है।
प्रार्थना का चक्र यहाँ पूरा होता है।
सही बात है। ये सोचना भी कमाल है कि एक यात्रा जो मांगने से शुरू होती है, उसका अंत सिर्फ धन्यवाद पर होता है। पूरी यात्रा मांग से मुक्ति की है।
तो इस सब का मतलब क्या हुआ? हमने सिर्फ स्वीकारना चरण के भीतर एक पूरी यात्रा देखी। ये सक्रिय रूप से गुणों को अपनाने, यानी करने से शुरू होती है।
स्रोत 3A।
फिर ये स्वयं की दिव्यता को पहचानने यानी जानने तक जाती है।
स्रोत 3B।
और अंत में एक सिद्ध अवस्था और कृतज्ञता यानी होने पर पहुंचती है।
स्रोत 3C।
ये दिखाता है कि एक मंत्र का अर्थ पत्थर की लकीर नहीं होता, बल्कि साधक की चेतना के साथ, उसकी आध्यात्मिक यात्रा के साथ साथ विकसित होता और गहरा होता जाता है।
आपने इसे खूबसूरती से सार दिया, और अगर हम इसे सीखने की किसी भी प्रक्रिया से जोड़ें तो ये स्रोत हमें दिखाते हैं कि सच्ची समझ हमेशा क्रमिक होती है, ग्रेजुअल होती है। ये हमेशा पूछने से शुरू होती है, मैं ऐसा कैसे बन सकता हूँ, फिर ये करने में बदलती है, मैं ऐसा कर रहा हूँ, और अंत में ये बस होने की अवस्था में पहुंच जाती है, मैं ऐसा ही हूँ।
शब्द वही रहते हैं,
मंत्र वही रहता है, लेकिन साधक का उसके साथ रिश्ता पूरी तरह बदल जाता है।
ये एक शानदार दृष्टिकोण है। मतलब एक ही मंत्र अलग अलग लोगों के लिए या एक ही व्यक्ति के लिए जीवन के अलग अलग पड़ावों पर बिल्कुल अलग मायने रख सकता है।
बिल्कुल। और इन स्रोतों ने हमें प्रार्थना से स्वीकृति और फिर कृतज्ञता तक का एक साफ रास्ता दिखाया। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात है, एक सवाल जो ये स्रोत उठाते नहीं पर जिसकी तरफ इशारा जरूर करते हैं।
वो क्या है?
सोचने वाली बात ये है कि कृतज्ञता के बाद अगला कदम क्या हो सकता है, जब कोई व्यक्ति उस होने की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, जब मांगना और प्रयास करना समाप्त हो जाता है और सिर्फ आभार बचता है, तो वो ऊर्जा या वो चेतना दुनिया में कैसे प्रकट होती है? जब यात्रा पूरी हो जाती है तब यात्री क्या करता है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर विचार किया जा सकता है।